آج بھی کسی قسم سے عبادت میں جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا اور آئندہ بھی نہیں ٹھہرایا جائے گا. سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اس آیت کو پڑھیں گی تو اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ کانوٹیشن اور یہ آپ کو کانسٹنٹلی فلٹر ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی ٹل دا لاسٹ آیا. عبادت کے روٹ ورڈ سے ہی اعبدو اور عبادت کے روٹ ورڈ سے ہی تعبدون بنا ہے. تو عبادت پر بہت زور نظر آئے گا آپ کو آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک. کانسٹنٹ اعبدو تعبدون ابتم اعبدو تعبدون آپ کو کانسٹنٹلی عبادت سے ہی ریلیٹڈ الفاظ ملیں گے. So it's a very good point to discuss today, inshallah, the meanings, the comprehensive meanings of ibadah, taaki inshallah phir hum smoothly chale, because overall phir uske baad surat ka jo ek synopsis hai wo more or less jo hai wo phir ek hi pattern par chalega, to hum ayat number 3 aur 4 ko ek saath karne ki koshish karenge inshallah. Phir 5th almost wahi hai jo 3rd ayat hai. To jab hum ayat number 2 mein aate hain aur hum dekhte hain ki yahi se ibadat par zor shuru ho gaya hai, so it's better to have a good grip on the definition of ibadah. Sheikh ul Islam Ibn Taymiyyah inhone badi comprehensive definition ibadat ki di hai ke abd banne ke liye insaan ko kya karna hota hai, to unhone isko summarize kar diya hai aur summarize karte hue Ibn Taymiyyah ne 5 conditions apni kitab mein mention ki hain aur wo kehte hain ki agar musalman in 5 conditions ko internalize kar le تو وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کا عبد بن کر رہتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, خوشی اور غم آتا ہے, ہنسی اور رونا آتا ہے, لیکن اگر یہ 5 پلرز اپنی جگہ کانسٹنٹ ہیں اور فرم ہیں تو انسان اپنے آپ کو رب کی عبادت پر ہی زندگی میں رکھتا ہے اور رب کی عبادت پر ہی اس کو موت آتی ہے. تو وہ ڈیفینیشن جو دیتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے یہ کیا ہے, عبادتن اسمن جامعن. عبادت کا لفظ اصل میں اس جامع ایک کمپریہنسو اسم ہے, لکل ما یحب اللہ یرضاہ, ہر ایک کے لیے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, یرضاہ اور راضی کرنے کے لیے اس کو رہتا ہے, یعنی اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا زندگی کا مقصد ہوتا ہے رب کو راضی کرنا. کیسے؟ من الاقوال, جو بولے اس سے, جو بولیں وہ بولیں جس میں رب ناراض نہیں ہوگا. تو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے رب کو من الاقوال, اپنی سپیچ سے, والافعال, اپنے افعال سے, والظاہر والباطن, اپنے پورے ظاہر اور اپنے پورے باطن سے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو دس از اے ون کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ابن تیمیہ نے مینشن کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے 5 کنڈیشنز مینشن کی ہیں. یہ 5 کنڈیشنز ہیں جو کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنی ہے اگر وہ واقعی رب کا عبد بننا چاہتا ہے, اور یہی 5 کنڈیشنز تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی خوبصورتی سے مینیفیسٹ ہوتی تھیں, اور ہر کنڈیشن اپنے کلائمیکس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نظر آتی تھی. نمبر 1 جو کہ کنڈیشن ہے جو پوری کرنی ہے. ہاں, اور یہ ساری کنڈیشنز یاد رکھیے گا, یہ ان کو آپ انکنڈیشنل کنڈیشنز کہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ میری بات مانے گا تو میں کنڈیشن نمبر 1 مانوں گی, اللہ میری زیادہ باتیں مانے گا تو میں کنڈیشن 2 مان لوں گی ساتھ ساتھ, اور اللہ میری ساری باتیں مانے گا تبھی میں صرف 5 کنڈیشنز مانوں گی. نہیں, these all are unconditional عبادات, these all are unconditional angles جو ہمیں پورے کرنے ہیں رب کا عبد بننے کے لیے. پہلی کنڈیشن اسکالرس کہتے ہیں, جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں مینشن بھی کی ہے, وہ ہے اطاعت, اوبیڈینس, انکنڈیشنل اوبیڈینس. یعنی اگر کہیں زندگی میں ایک طرف اللہ کی بات ہو اور ایک طرف نفس کی بات ہو, یا ایک طرف اللہ کی بات ہو اور ایک طرف کسی اور انسان کی بات ہو, دنیا کی بات ہو, تو جو عبد ہوگا حقیقتاً مسلمان مومن ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کی بات مانے گا, مخلوق کی بات ایسے میں نہیں مانے گا. مخلوق کی اتنی بات مانی جا سکتی ہے جو اللہ کی دیوی شریعت کے دائرے میں ہو, اس لیے کہ رب کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. صرف مخلوق کی بات کب ماننی ہے؟ جب وہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے, ورنہ آپ کو ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کر کے हमने नफ्स की बात मानी या दुनिया की बात मानी या किसी इंसान की बात मानी, तो इंसान ने शिर्क कर दिया। और इब्ने तैमिया लिखते हैं, देन यू विल बी नो लॉन्गर एन अब्द, फिर आप अपनी उस कैपेसिटी में अब्द नहीं रहते। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल ये बहुत जरूरी है इस इताअत को समझना। याद रखें इस सूरत का बैकग्राउंड, कुफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांस्टेंट कॉम्प्रोमाइज करने की तरफ लेकर जा रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कराना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया गया आपको अनकंडीशनल अल्लाह की इताअत करनी है, दैट्स इट। हाँ, आपको लोगों के साथ नरम लहजा इख्तियार करना है, मगर आपको फरमाबरदारी अल्लाह की इख्तियार करनी है। आज जो ये कहे कि ठीक है मैं नमाजें पढ़ूंगी, लेकिन मैं साथ साथ जो है वो फैशन में अपने अपने ड्रेस कोड में फैशन को फॉलो कर लूंगी, या जो कहे कि कोई बात नहीं थोड़ा सा ड्रेस कोड में फैशन को फॉलो किया जा सकता है, अल्लाह इतना भी सख्त नहीं है, अल्लाह इतनी पेटी पेटी चीजों पर नहीं देखेगा। इट्स ओके अगर तुम्हारे एंकल से ऊपर तुम्हारा ट्राउजर निकल गया, इट्स ओके अगर तुमने स्किनी जीन्स पहन ली, इट्स ओके अगर तुमने जो है वो हर एक के सामने स्लीवलेस पहन लिया, या इट्स ओके अगर तुम सड़क पर जो हो वो बगैर किसी अपनी ओढ़नी के या दुपट्टे के या चादर के या स्कार्फ या अबाये के निकल गई। जो ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने की तरफ बढ़ेगा और जो ऐसे इंसान की बात को सुनेगा, इसका मतलब वो उस इंसान ने जिसने किसी को सुना अल्लाह की नाफरमानी में, उसने शिर्क किया और उसने अपने आप को अल्लाह के अब्द बनने से खुद महरूम कर दिया। इसी तरह फ्रेंड्स के कहने पर जब बच्चे गलत चॉइसेस करते हैं, अम्मा को नहीं पता चलेगा, थोड़ी सी ये ड्रग लेकर देख लो, बच्चा कहे कि नहीं मुझे लगता है नशे की चीज मुझे इजाजत नहीं है बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, तो फिर वो फ्रेंड जो कहे कि इट्स ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस फ्रेंड की बातों में आके उस मुसलमान बच्चे ने उस बात को मान लिया, तो इस पॉइंट पर उस बच्चे से शिर्क कैपेसिटी में हो गया। किस कैपेसिटी में? जहां अल्लाह की इताअत को हमने अनकंडीशनल अडॉप्ट नहीं किया। इट्स ओके, अनकंडीशनल इताअत हम क्यों नहीं कर पाते? जब हम देखते हैं कि माशरे का प्रेशर बढ़ता है। इट्स ओके अगर आप जो हैं वो ऑपोजिट जेंडर से हाथ मिला लें, आज के दौर का तकाजा है, तो फिर अब्द बनने की कैटेगरी से हम बाहर हो रहे हैं खुद अपने आप को। इट्स ओके होमोसेक्सुअल्स के राइट्स भी जो हैं इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है जब जब हम ये काम करेंगे हम मखलूक की बात मानेंगे, और हमने इस रूल को समझा नहीं, ला ताअतल मखलूक फी मासियतिल खालिक। तो कंडीशन नंबर वन पूरी करना बहुत जरूरी है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, उसका अब्द बनकर रहे। सो इताअत इज कंडीशन नंबर वन। बी वेरी केयरफुल, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया के फायदों के लिए लोगों की बातों में आकर रब की हुदूद ना तोड़ें। बी वेरी केयरफुल। इसी तरह से यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करते हुए जाऊं इससे पहले कि मैं अगली कंडीशन पर जाऊं। जब आप सिर्फ अल्लाह की इताअत करते हैं ना, तो आप अपने किसी रिश्ते के कहने पर, अपने ही खानदान के किसी भी मासूम इंसान पर या बेकसूर इंसान पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। खानदानी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक्सट्रीम डिस्ट्रॉयड लेवल तक है, ये जितनी भी खानदानी पॉलिटिक्स है। अम्मी के कहने पर भाभी को निगेट नहीं किया जा सकता, भाभी के कहने पर अम्मी को निगेट नहीं किया जा सकता। इंसाफ का साथ देना है, इंसाफ करने वाले बनिए। याद रखें शिर्क सबसे बड़ी नाइंसाफी है, और जब इंसान रब के साथ नाइंसाफी करता है तो वो इंसानों के साथ भी इंसाफ करने से जो है वो कासिर रह जाता है। तो हमारा काम क्या है? अनकंडीशनल इताअत। हम हक बात करेंगे, हक बात करते में जुबान और जुबान के अल्फाज शहद की तरह मीठे होंगे, लहजा जुबान के साथ साथ देगा। ये नहीं होगा कि लहजा कुछ और कह रहा है आपके, मैंने अल्फाज का सिलेक्शन तो बड़ा अच्छा किया था, बट लहजा और फेशियल एक्सप्रेशन अगर साथ ना दें तो आपके अल्फाज का सिलेक्शन जो है वो भी आपके मुंह पर मारने के काबिल होता है। बिकॉज किसी को सख्त अल्फाज कहने से पहले ये सोच लिया करें, देन टुमारो यू हैव टू ईट देम। इसलिए जब भी बात करें हक बात करें, हक बात करते हुए लहजा अल्फाज फेशियल एक्सप्रेशन टोन सब शहद की तरह मीठा रखें, बिकॉज हक ऑलरेडी बहुत कड़वा है। घरेलू सियासत के अंदर इंसाफ की बात करें, अम्मी गलत हैं, बहुत अदब के साथ नहायत मोहब्बत के साथ अम्मी को मेंशन कर दिया जाए कि मैं अम्मी गलत बयानी नहीं कर सकती हूँ। दिस इज द वेल एस्टेब्लिश स्टेज ऑफ एन अब्द। तो कंडीशन नंबर वन हमें सिखाया गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, ला आबुदू मा ताबुदून, मैं कभी भी उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी हम अपनी इताअत को जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, हमें अपनी इताअत को अल्लाह के लिए खालिस रखना है। कंडीशन नंबर टू इज अनकंडीशनल हुब। अनकंडीशनल हुब ऐसी मोहब्बत हो अल्लाह से कि वो मोहब्बत टॉप प्रायोरिटी पर हो, एंड वी हैव टू लव अल्लाह मोर देन एनीवन। और एक और बात बता दूं, आपको अल्लाह से मोहब्बत करनी है अपने से भी ज्यादा। जब हम अपने से भी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हम अपने 5 फुट के जिस्म के ऊपर नाफरमानी को नहीं ला सकते, हम अपने फैशन के नाम पे ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें अल्लाह नाराज हो सकता है, हम अपने चेहरे का कोई ऐसा हाल नहीं कर सकते जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है। और ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा जब बंदा अब्द होगा और अपने नफ्स से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, जब बंदा जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की कोशिश करता होगा। इसी तरह से सूरह बकरा की आयत को याद रखें, वमिनन नासी मन यत्तखिफू मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में से वो जो अल्लाह के अलावा अपने एक साथ में कुछ पार्टनर्स बना लेते हैं। कैसे पार्टनर होते हैं? उनके सामने सजदा नहीं करते, युहिब्बूनहुम, असल में वो मोहब्बत लोगों से ऐसे करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। लोगों को इतना ज्यादा हाई पेडेस्टल पर बिठा लेना कि उनका थिक एंड थिन सब मानना, उनके हर तरह की बात को फॉलो करना, आंखें बंद करके उनको खुश करने की कोशिश करना, जब इंसान ये करता है तो उसको ठोकर लगती है। इंसान को असल मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो इंसान अपने बाकी रिश्तों को सही कंपार्टमेंट्स में बहुत आराम से मोहब्बत में रखने में कामयाब हो जाता है। हमारी फितरी मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत हो, स्पाउस से मोहब्बत हो, वालिदैन से मोहब्बत हो, बहन भाइयों से मोहब्बत हो, इवन माल से मोहब्बत भी स्कॉलर्स कहते हैं, टू सम एक्सटेंट इट्स नेचुरल, इंसान चाहता है कि उसके पास माल हो। लेकिन ये सारी मोहब्बतें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नीचे रहें, ये प्रायोरिटी पर हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। वरना याद रखें, अगर हमने अनकंडीशनल मोहब्बत अल्लाह से नहीं रखी तो हमारे रिश्ते मोहब्बत के नाम पर हमें अल्लाह का नाफरमान बना देंगे, खास तौर पर औलादें। औलादों की मोहब्बत हमें नाजायज आमाल की तरफ बड़ा स्विफ्टली ले जाती है। औलाद की मोहब्बत में, औलाद से मोहब्बत करना अल्हम्दुलिल्लाह फितरी, और माँ होते हुए तो ये कोई आपके दिल से निकाल नहीं सकता। अल्लाह ताला औलादों को भी फरमा बरदार बनाए, और अल्लाह ताला माँ बाप के इम्तहान को भी आसान रखे कि उनकी औलादें उनके लिए फितना ना बने। लेकिन फैक्ट क्या है कि औलाद की नाजायज ख्वाहिशात मोहब्बत में आके पूरी ना करें, वरना क्या होगा कि अपनी भी आखरत तबाह करेंगे और उनकी भी आखरत तबाह करेंगे। जो बात गलत है, जो बात रब की नाफरमानी की है, औलाद की मोहब्बत में आकर उसकी इजाजत नहीं दें। प्लीज जस्ट ओपन योर आइज, जस्ट ओपन योर आइज। कॉम्प्रोमाइज अलग होता है और हिकमत अलग होती है। अल्लाह से हिकमत मांगे, लेकिन जो बात अल्लाह की नाफरमानी की है, आप और मैं अपनी औलाद की मोहब्बत में अंधे होकर उनको इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तो जब अल्लाह से हुब बिल्कुल उस लेवल का होगा जैसा अल्लाह चाहता है, तो हम औलाद की मोहब्बत में नाजायज काम नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल रखूंगी हम सबके सामने, और मेरा ख्याल है हम सबके अमल के लिए काफी होगी कि हम औलाद की मोहब्बत में कितना रब की नाफरमानी करते हैं, औलाद की नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने में हम कितना दीन के शायर का मजाक उड़ाते हैं। शादियां होती हैं, बच्चों की शादियां करते हुए हर नामुनासिब रस्म, हर तरह का इसराफ, अजीब व गरीब किस्म के जो हैं वो मामलात उन शादी ब्याहों के अंदर, और माँ बाप, पर्दे वाली अम्मी और दाढ़ी वाले अब्बा, और जैसे ही मेहमान सारे आ गए और अब दुल्हन दुल्हा जो हैं वो आ रहे हैं, और पूरे हॉल के अंदर नाइट क्लब का माहौल बन गया, डिस्को बॉल्स शुरू और पूरा जो है वो पिच डार्क, और स्पॉटलाइट के अंदर दुल्हा और दुल्हन आ रहे हैं, ब्लास्ट म्यूजिक चल रहा है, फुल मिक्स गैदरिंग है, और अम्मा खुद हिजाब वाली और अब्बा दाढ़ी वाले, और अगर कोई उठकर इंसान प्यार मोहब्बत में कह दे बहन क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो क्या कहते हैं माँ बाप? क्या करें, हम मजबूर हैं। औलाद की मोहब्बत बेटे की ख्वाहिश थी, क्या करते, मजबूर हो गए थे, भूल गए ना हम मोहब्बत में किसकी आगे बढ़ना था। मोहब्बत रब की टॉप पर होनी चाहिए थी, औलाद उसके पीछे रहती। और जब ऐसा होता है तो हम औलाद की नाजायज ख्वाहिशात नहीं अपनी जो है वो आंखें बंद करके पूरी करते हैं। ये जॉब्स के अंदर, जहां जहां डिपार्टमेंट्स के अंदर रिश्वत आम है, पैसा खिलाना फाइल आगे पीछे करने के लिए आम है, आप वजह पूछें लोगों से, क्यों ऊपर की कमाई खाते हैं, क्यों रिश्वत लेते हैं, क्यों चाय के लिए पैसे मांगते हैं, क्या कहते हैं, क्या करें मैडम, मजबूरी है, बच्चों के पेट भी तो पालने हैं। बच्चों की मोहब्बत ने रब की मोहब्बत को कहीं बहुत पीछे कर दिया। यही क्लेम होता है सबका, बच्चों की ख्वाहिशात भी तो पूरी करनी है। सड़क पर खड़ा हुआ पुलिस वाला ईद आने से पहले और ईद के दिन जबरदस्ती हर एक को रोक रोक कर चालान कर रहा होता है, और चालान की टिकट काट नहीं रहा होता। क्यों? इसलिए कि वो तो चाह रहा होता है कि टिकट ना कटे, बल्कि उसके हाथ पे आप थोड़े से पैसे रख दें। और जब आप उसको कहते हैं कि भाई ये तो रिश्वत है, तो क्या कहता है, हमारी भी तो ईद है, बच्चों को जाकर भी तो कुछ खिलाना पिलाना है, हमें ईदी दे दो। ये सब क्या है? वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। जब अपने ही जैसे इंसानों को उनकी मोहब्बत में हम इतना ऊपर ले जाते हैं कि हमें रब की मोहब्बत और रब की फरमा परदारी नजर नहीं आती। ये सूरतें जिंदा सूरतें हैं, ये कलाम जिंदा कलाम है, और ये कलाम हमसे बात कर रहा है, हमारी आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सोल्यूशंस दे रहा है। ये 1450 साल पहले कहानी समझकर मत पढ़ा कर, आज के सबक के लिए पढ़ा करें। ये आपकी आंखें खोल देगा, दिमाग को रोशन कर देगा, दिल को एक्सपेंड कर देगा, अखलाक में आला जर्फी लेकर आ जाएगा, और जिंदगी के अंदर चॉइसेस करने में आपको मदद देगा। सो सेकंड कंडीशन जो पूरी होना बहुत जरूरी है इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हुब। इंसान की अब्द होने की कैफियत ये है कि मेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से हो, और उसकी निशानी ये है कि मैं किसी रिश्ते को भी अल्लाह की नाफरमानी में मोहब्बत के एंगल से ऐसी मोहब्बत ना करूं कि मैं उस रिश्ते की फरमा बरदारी कर जाऊं और अल्लाह की नाफरमानी कर जाऊं। तीसरी कंडीशन इब्ने तैमिया ने जो मेंशन की है वो है तवक्कुल, ट्रस्ट, भरोसा। सारा तवक्कुल अल्लाह पर हो, मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर हो, यानी सिर्फ हमें सजदा अल्लाह के सामने नहीं करना होता कि बस सजदा कर लिया और हमने तवक्कुल शो कर दिया। माइंडसेट पूरे का पूरा मेरा अल्लाह के साथ तवक्कुल पर अटैच हो, कि मैं उसके हर हुक्म पर ऐसा भरोसा करूं कि मुझे पता हो कि जो उसने कहा है उसमें मेरा फायदा है, जो वो कह रहा है उसी में मुझे खैर मिलेगी, जो वो मुझे देगा उसी से मुझे बेहतरीन बरकत मिल सकती है। फिर हालात आपके जैसे भी हों, तंगी आए या खुशहाली आए, आप अपने रब की इताअत पर तवक्कुल के साथ जमे रहते हैं। हमारा तवक्कुल शैटर्ड करता है, ये तवक्कुल कमजोर होता है रब के ऊपर, तो हम फिर दुनिया में इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, लोगों को देखते हैं, नाजायज कमाने की कोशिश करते हैं। इंसान का तवक्कुल कम होता है, अ वेरी वेरी सीरियस सीरियस यू कैन से रियलिटी, इंसान का तवक्कुल ही कम होता है कि जब इंसान दूसरे इंसानों का हक मार लेता है। जब अल्लाह पर अब्द वाली कैफियत, अल्लाह के साथ अब्द वाली कैफियत नहीं होती ना, भरोसे वाली, तो इंसान बहुत इनसिक्योर होता है। जो जितना इनसिक्योर होता है वो उतना दुनिया का माल समेटता जाता है। दिस इज अ फिलोसफी, रीड फ्रॉम द स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू। जो जितना इनसिक्योर होगा उसको उतना माल जमा करने का शौक होगा, चाहे हलाल से आता है या हराम से आए। और हमारा अल्लाह पर ही भरोसा कम होता है, हमें लगता है कि जितना पैसा होगा हम खुश रहेंगे, औलादें खुश रहेंगी। उतना इंसान दुनिया में पैसा कमाने की तरफ भागता है, उतना इंसान जो है वो इस चीज को इग्नोर कर देता है कि किसका हक मारा और किसका हक नहीं मारा। याद रखिएगा एक बात, हम सब याद रखें, मजलूम और रब का ताल्लुक, किसी का हक मारते हुए कभी मत भूलें, कभी मत भूलें। मजलूम के लब खामोश होते हैं लेकिन मजलूम की सरगोशियां रब के अर्श तक पहुंच जाती। अगर जिंदगी में किसी का हक मारा है तो आखिरी सांस आने से पहले, मलकुल मौत नजर आने से पहले उसका हक उसको लौटा दें। वरना याद रखें, मजलूम बजाहिर आपको दुनिया में माफ भी कर दे, मजलूम के लब की खामोशियां भी अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं। हम दुनिया में लोगों का हक मारते हैं जब तवक्कुल की कमी होती है, हम पैसे पर तवक्कुल करते हैं, रब पर तवक्कुल नहीं करते, हम दुआएं मांगते हैं बरकत की, लेकिन हम कॉन्सेप्ट भूल गए बरकत का, कि बरकत रिस्क के हलाल के साथ है, किसी का हक मार कर अपने माल में ना शामिल किया जाए, इसमें बरकत है। वरना देख लें, बीमारियों की लाइन लगी होती है, परेशानियों की लाइन लगी होती है, सब कुछ होते हुए भी जहनी सुकून नहीं होता। क्यों? इतना माल है, मल्टी मिलियनेयर, हाँ मल्टी बिलियनेयर, एक नहीं दो दो घर, दो नहीं चार चार घर, एक नहीं चार चार प्लॉट, एक किसी किसी अच्छी कंपनी में एक जगह स्टॉक नहीं, 85 कंपनी में स्टॉक है, एक बैंक में अकाउंट नहीं, कई बैंक्स में अकाउंट है, कई तरह से जो है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि रब पर तवक्कुल नहीं किया था और इसके हलाल नहीं कमाया था। जिस जिसका हक मारा, चाहे वो खामोश है, लेकिन उसकी सरगोशी अल्लाह के अर्श तक पहुंच रही है, उसकी अजियत अल्लाह के रब तक पहुंच रही है। तो अपनी जिंदगियों में सुकून अगर चाहिए, चैन चाहिए, अब्द बने, अब्द भरोसा करें अपने रब के ऊपर, उसकी जात पर भरोसा, वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमारी औलादों की हिफाजत करेगा। हम कहते हैं आज किसी का हक मारा है, तो वजह क्या है, क्यों मारता है इंसान किसी का हक? भाई कल को मेरी औलाद के काम आएगा, आई एम जस्ट सिक्योरिंग देयर फ्यूचर। ऐसे करते हैं बच्चों का फ्यूचर सिक्योर? कौन सा फ्यूचर? आखिरत में वो जिन बच्चों के पेट में किसी का हक मार कर निवाला गया है, आखिरत में उन बच्चों का क्या अंजाम होगा? दुनिया में भी हम भूल जाते हैं, दुनिया में भी हमारे आसार जो हैं अमाल के कहीं ना कहीं टच कर जाते हैं। माल नहीं बचाता है परेशानियों से, रब बचाता है। तो रब पर भरोसा करें और अपनी जिंदगी में अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए रिस्के हलाल कमाएं। दूसरा एंगल इस तवक्कुल में, जो हमारी आजकल की जिंदगियों से बड़ा रिलेटेड है, इस चीज पर भी तवक्कुल रखें कि जो शरीयत उस रब ने हमें दी है, अल्लाह के रसूल ने सिर्फ जुमले नहीं अदा किए थे कुफार के पास जाके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फिलॉसफी बयान कर दी थी, पूरा माइंडसेट दे दिया था, पूरा डॉगमा बयान कर दिया था, ला अबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत तो कर ही नहीं सकता जिसकी तुम इबादत करते हो, बिकॉज मेरा पैटर्न ही अलग है, मेरी इबादत ही अलग है।